नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवाईमाधोपुर और धौलपुर के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। दौसा के डूंगरपुर गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आरपीएससी की ओर से आरएएस परीक्षा 2023 के सातवें चरण के साक्षात्कार आज से शुरू हो रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता। और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी भागों में 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवाईमाधोपुर और धौलपुर के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर जायजा लेंगे। श्री शर्मा चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी और बिश्नोता हवाई पट्टी पर आमजन और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि उनके साथ कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री सवाईमाधोपुर और खंडार क्षेत्रों में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर के माध्यम से दौरा कर प्रभावित क्षेत्र और नुकसान का जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी पर जन सुनवाई का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
इसके बाद मुख्यमंत्री दौसा के डूंगरपुर गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री शर्मा जनसमारोह में लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने को स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की ये परियोजना देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और हमारे नेट जीरो दृष्टिकोण को बल प्रदान करता है। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत के समुद्री और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती पर चर्चा की जाएगी। समिति के निर्णयों की घोषणा बुधवार को होगी। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में दिवाली से पहले ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा कर सकता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगातार 3 बार दरों में कुल 100 आधार अंकों की कटौती के कारण रिजर्व बैंक रेपो रेट को संभवतः 5.5% पर ही बनाए रखेगा। जैसलमेर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राज्य वन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से थार के शिकारी पक्षियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों जैसे गिद्धों की पारिस्थितिकी को समझना है। इसके तहत पहली बार थार क्षेत्र में शिकारी पक्षियों पर जीपीएस ट्रांसमीटर आधारित टेलीमेट्री अध्ययन शुरू किया गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शोधकर्ता वरुण खैर ने बताया कि ये अध्ययन इन प्रजातियों की आवाजाही, निवास स्थान, प्रजनन व्यवहार और खतरों को समझने में मदद करेगा। इससे इनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने में सहायता मिलेगी।
राष्ट्रीय मरुद्यान ये गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में पाए जाने वाले 9 गिद्धों के प्रजाति में से 8 गिद्धों के प्रजाति यहाँ पे पाए गए हैं। इन पक्षियों पे अध्ययन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पिछले हफ्ते 1 इजिप्शियन वल्चर और 1 टॉनी ईगल को जीपीएस ट्रांसमीटर फिट किया गया। इस जीपीएस ट्रांसमीटर से हमें ये दोनों बर्ड्स की लोकेशंस मिलती रहेंगी, जिससे ग्राउंड पे मॉनिटरिंग करने में सहूलियत मिलेगी और अगर ये बर्ड्स कहीं और मूव करेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस परीक्षा 2023 के सातवें चरण के साक्षात्कार आज से शुरू हो रहे हैं। आयोग की उप सचिव चित्रा जैनानी ने बताया कि ये साक्षात्कार 21 अगस्त तक चलेंगे। गौरतलब है कि आरपीएससी द्वारा 972 पदों के लिए आयोजित आरएएस परीक्षा 2023 का परिणाम 2 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तगण बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारों के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। विभिन्न पवित्र स्थलों से कांवड़िये पवित्र जल लाकर भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। भरतपुर में शमशानेश्वर महादेव मंदिर में जीवित सांपों की सजीव झांकी सजाई गई है। पाली में सोमनाथ मंदिर में शिवजी का फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया है। मंगलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्र घट अभिषेक का आयोजन हो रहा है। जैसलमेर की रत्नेश्वर, मुक्तेश्वर और देव चंदेश्वर महादेव सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालु उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। उधर भीलवाड़ा में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीग जिले के कुम्हेर की क्रय विक्रय सहकारी समिति में श्री अन्न भंडार का आउटलेट खोला गया है। इसमें उपभोक्ताओं को उचित दर पर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।
इन आउटलेट्स में मोटे अनाज से निर्मित रागी के फ्लैक्स, रोस्टेड फ्लैक्स, पास्ता और नूडल्स आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे आउटलेट्स खुलने से श्री अन्न उत्पादों की आमजन तक तो पहुंच बढ़ेगी, साथ ही स्वयं सहायता समूहों के मिलेट उत्पादों की बिक्री से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए मिलेट उत्पादों को रखने से ग्रामीण महिलाओं को भी स्वावलंबन मिल रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध से निकलकर जोधपुर तक जाने वाली जवाई नहर के लिए डीपीआर और सर्वे के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 2,280 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके बनने से जवाई बांध से व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी का भी उपयोग हो सकेगा।
अब नहर में पानी बहने पर इसके रास्ते में आने वाले गांवों के जलाशय लबालब होंगे और नहर को फिर से विकसित करने पर मार्ग में पानी स्टोरेज के लिए 200 MCFT की 5 डिग्गी बनावट प्रस्तावित है। नहर को तैयार करने के साथ ही इसके मार्ग में 5 पंप हाउस बनाए जाएंगे। पूरी नहर में मौजूदा नहर लाइनिंग, चिनाई, साइफन, जल सेतु, बिटिमेन, सर्विस रोड, VRB, फुट ब्रिज, गेट हेड और क्रॉस रेगुलेटर चिल्ट क्लीनर्स होंगे। साथ ही जंगल कटिंग, फेसिंग, पक्की डिग्गी और कच्चे फीडर चैनल आदि के मरम्मत और नवीनीकरण कार्य किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
प्रदेश में कल बारिश का दौर धीमा रहा, हालांकि कुछ जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। भरतपुर के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बरसात दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 63 मिलीमीटर बारिश रुदावल में हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल बांसवाड़ा, डबोक, डूंगरपुर, करौली, प्रतापगढ़, झुंझुनू, दौसा और भरतपुर सहित कुछ अन्य शहरों में बारिश हुई। जयपुर में दिन भर छितराए बादल छाए रहे, इससे उमस का असर बढ़ गया। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। आगामी 5-6 दिन पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने और अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सवाईमाधोपुर और धौलपुर के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। दौसा के डूंगरपुर गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आरपीएससी की ओर से आरएएस परीक्षा 2023 के सातवें चरण के साक्षात्कार आज से शुरू हो रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी भागों में 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।